ओम शांति। आप सभी से आज तीन प्रश्न हैं। पहला, बाबा ने हमें ये जीवन किस लिए दिया है? प्रश्न नहीं लिखो, उत्तर बताओ। बाबा ने हमें ये जीवन किस लिए दिया है? सेवा के लिए और श्रेष्ठ बनाने के लिए और सबको सुख देने के लिए। और ठीक है, बहुत अच्छे उत्तर। विश्व का और स्वयं का परिवर्तन और देवता बनाने के लिए। और माताएं बताएंगे क्यों मिला है ये जीवन। अब ये जीवन, ये सब ठीक बातें हैं, दिव्य कार्य करने के लिए मिला है। अब इस जीवन में हमें वो नहीं करना जो आज तक हम 84 जन्मों में करते आए हैं। जरा चिंतन करेंगे सभी इस पर। अलौकिक जीवन है, केवल एक जीवन, और इस एक जन्म में वो सब कुछ नहीं करना है जो 84 जन्मों में किया है, और वो सब कुछ करना है जो 84 जन्मों के लिए हो। बहुत अच्छा चिंतन का विषय है ये, स्वचिंतन का। इससे आत्मा अंतर्मुखी होकर अपने महान लक्ष्य की ओर चलेगी। ये चिंतन का काम मैं खास बहनों के लिए एक संकल्प दिया है जो भट्टी में आए हैं। इस पर चिंतन करके आप लिखेंगे, ये जीवन बाबा ने हमें क्यों दिया है। बाबा का दिया हुआ ये जन्म है, जीवन है, और इस जीवन में बाबा ने और क्या क्या दिया है। कुछ गिफ्ट दी हैं, कुछ वरदान दिए हैं, कुछ अधिकार दिए हैं, कुछ योग्यताएं दी हैं। वो हरेक अपने अपने को क्या मिला है, बिल्कुल व्यक्तिगत, उसको जरा देखेंगे, उस पर एक दृष्टि डालेंगे। हमें क्या मिला है इस जीवन में जिसके द्वारा हम अपने 84 जन्मों को उज्जवल कर सकते हैं। ऐसा कुछ बाबा ने हरेक को दिया है, कुछ गिफ्ट या वरदान, कोई विशेष तरह का ज्ञान, योग्यताएं या शक्तियां, उसको जानना आवश्यक है। इस संगम युग पर वो आत्माएं बहुत आगे बढ़ जाती हैं। दूसरा प्रश्न है वैसे मेरा, उसका एक उत्तर मैं दे रहा हूँ। प्रश्न ये है कि इस जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए, इस जीवन की सफलता के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। और उसका एक उत्तर ये है कि वो आत्मा जो अपनी महानताओं को और अपने अंदर छुपी हुई एक विशेष कमजोरी को जानती है, वो आगे बढ़ जाती है। कमजोरी केवल एक होती है, मुख्य बीज जिससे कई कमजोरियां प्रकट होती हैं और महानताएं अनेक होती हैं। दोनों को जानने वाले बहुत आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न से पहले एक दूसरा प्रश्न है जो हमारे पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है कि संगम युग पर अपने कार्यों की सफलता के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, कौन कार्यों में सफल होते हैं। पहले इसका उत्तर निकालेंगे और फिर उस प्रश्न का कि जीवन में सफल कौन होते हैं। पहला प्रश्न था जीवन क्यों मिला है, दूसरा है इस जीवन में कार्य कौन सफल करते हैं, कौन कार्यों में सफल होते हैं और कौन जीवन में सफल होते हैं। कार्यों में सफल कौन होते हैं? सब कार्यों में है, सेवा का कार्य है सबके पास, लौकिक कार्य भी है वो भी सेवा है, किसी को अपने गृहस्थ का कार्य है उसको भी सेवा समझा जाए। कौन सफल होते हैं कार्यों में? जो बाबा का कार्य समझकर चलते हैं। और जब हम बाबा का कार्य समझते हैं तो हमारे पास क्या नहीं रहता? मैंपन नहीं रहता। तो कार्यों की सफलता का मूल पहला मंत्र है मैंपन का त्याग, और बाबा का कार्य है ये स्मृति। अगर हमें ये स्मृति रहती है कि बाबा का कार्य है, तो इसमें क्या स्मृति हो गई? कौन सी स्मृति हो गई? सिंपल बात, इसमें बाबा की स्मृति हो गई। और जहां बाबा की स्मृति है वहाँ हमें याद रखना चाहिए, बाबा के ही महावाक्य हैं। कर्म योग पर अब से 4-5 साल पहले एक मुरली में चर्चा करते हुए बाबा ने कहा, जहाँ बाबा की याद है वहाँ तुम्हारे अंदर डबल शक्ति है, एक तुम्हारी अपनी शक्ति और एक सर्व शक्तिवान की शक्ति। ये दो शक्तियां होने पर कार्य सहज पूर्ण हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो बाबा का कार्य है, इस स्मृति में बाबा की स्मृति आ गई और हमारे कार्य सरल होने लगे और मैं छूटने लगा। आज भी बाबा ने मैं के लिए कहीं कुछ बोला था मुरली में? बोलो, किसको याद है जिन्होंने सुना सवेरे? हाँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करूंगा या मैंने ये किया, इसका वर्णन तो सब करते हैं। गीता में भी लिखा है कि जो ये सोचते हैं कि मैंने ये अच्छे काम किए, इतनी धर्मशालाएं बनवाई, इतने भूखों को भोजन खिलाया, इतने इतने पुण्य किए और आगे चलकर मैं इतने इतने पुण्य करूंगा, ये भी रजो प्रधान कर्म है। क्यों क्यों है रजो प्रधान? बहने बताएंगे क्यों है ये रजो प्रधान। इतने अच्छे काम किए, पुण्य किया, इसमें मैं साथ में आ गया। लेकिन बाबा इसका बहुत सुंदर विश्लेषण करते हैं कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, ये भी मैपन है। क्यों मैपन है ये? मैं ये कार्य नहीं कर सकती, क्या भूल गया है कि मेरे साथ कौन है और वो खुद करा रहा है, इसलिए ये मैपन है। तो बहुत सूक्ष्मता की ओर बाबा हमें ले जाते हैं कि जहाँ बाबा की याद है वहाँ कोई आत्मा ये कह ही नहीं सकती कि मैं ये कार्य नहीं कर सकती। और आगे सोचें तो मैं ये संस्कार नहीं बदल सकती, या मैं अपनी ये कमजोरी नहीं भर सकती, या मेरे से ऐसा पुरुषार्थ नहीं हो सकता। ये मैंपन शब्द तो मैं है ही, लेकिन इसलिए ये मैंपन है क्योंकि बाबा को भूल गए, इसलिए अपने में विश्वास खो गया। सबसे बड़ी चीज जीवन की सफलता के लिए, दूसरी बात स्वयं में विश्वास, बहुत बहुत बड़ी चीज। अगर इसको पहला स्थान दिया जाए तो भी ठीक, स्वयं में विश्वास। और ब्राह्मणों में अगर सामूहिक रूप से देखा जाए तो अपने में विश्वास की कमी बहुत पाई जाती है। सहमत हैं आप इस बात से? बाबा में विश्वास रहता है कि बाबा सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, बहुत कुछ कर देगा वो, लेकिन हम कर लेंगे, ऐसा विश्वास कम रहता है। कई सोचते हैं ये भी अहम हो जाएगा कि हम कर लेंगे। अहम अलग चीज है, और स्वयं में विश्वास रखना, हिम्मत रखना, साहस रखना, उमंग उत्साह रखना, ये बहुत बड़ी चीज है। ये मैंपन नहीं होता, ये अहम नहीं होता। स्वयं में विश्वास कैसे जगता है? कैसे जगता है स्वयं में विश्वास? जगाया है ना बाबा ने हम सब में विश्वास। अब आप जरा सब अपने को देखकर विचार करें कि कैसे हमारे अंदर आत्मविश्वास जगता है। जब आप बाहर सेवाओं में हैं तो बहुत लोग आपसे प्रश्न करते होंगे, बहुत आजकल की युवा पीढ़ी में बहुत बड़ी कमजोरी है, आत्मविश्वास की कमी। विदेशों में तो बहुत ज्यादा, भारत में भी अब बहुत ज्यादा लोग प्रश्न करते हैं आपसे कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। अब हमें देखना है अपने को, बाबा ने हमारे अंदर आत्मविश्वास कैसे जागृत किया है। बोलो, क्या स्मृति दिलाई? हाँ, ये सब स्मृतियां दिलाई जो आपने बोली। कभी याद दिलाया कि तुम कल्प कल्प के विजयी हो, इस माया पर तुमने अनेक बार विजय पाई है। कभी याद दिलाया मैं तुम्हारे साथ हूँ, सर्वशक्तिमान। और क्या याद दिलाया? तुम शिव शक्ति हो, तुम हीरो एक्टर हो इस ड्रामा के, तुमने बड़े बड़े काम किए हैं, तुम भूल गए। जन्म लेते लेते तुम ये भूल गए कि तुमने कई जन्मों में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, असंभव काम किए हैं, जो बहुत कठिन थे वो सब काम कर दिए हैं। तो आत्माओं को थोड़ी या ज्यादा स्मृति आ गई, जिसको जितनी ज्यादा याद आ गई उसमें उतना ही ज्यादा आत्मविश्वास जग गया, जिसको कम स्मृति आई उसमें आत्मविश्वास कम जगा। कम स्मृति क्यों आई आत्माओं को? याद दिलाने वाले ने बहुत पावरफुल रूप से याद दिलाया है, किसी किसी को बिल्कुल याद नहीं आता। अगर उन्हें कहो कि तुम विश्व महाराजन थे, वो कहते हैं तुम ही थे, हम नहीं। अगर उन्हें कहा जाए तुम विजय माला के मणके थे, तो कहेंगे अपने बस का ये बात नहीं, तुम ही आओ माला में, हम तो उधर ही ठीक हैं जिधर हैं। क्यों नहीं याद आता? है ना प्रैक्टिकल बात, किसी को नहीं नशा चढ़ता इन बातों का, बिल्कुल सच्ची बात है, ये रोज सुनने और देखने में आती है। किसी को संपूर्ण स्मृति आ गई और किसी को बहुत थोड़ी और धीरे धीरे आ रही है। क्या आधार है स्मृति स्वच्छ होने का? बोलो बोलो, बुद्धि की स्वच्छता। इसलिए तीसरी बात, इस जीवन की सफलता के लिए बुद्धि की स्वच्छता एक और बहुत बड़ी चीज है। और बुद्धि में बाबा ने हम सबके लिए बहुत बड़ा विवेक दिया है, सफाई की है हमारी बुद्धि की, पूरी तरह उसको साफ कर दिया है। लेकिन आत्माएं फिर क्या करती हैं? सफाई हो जाने के बाद फिर भर देती है उसमें। सफाई करने वाला झाड़ू लगा लगा के थक गया। घरों में भी ऐसे होता है ना, बच्चे ऐसे होते हैं कोई चंचल, अब बार बार सफाई करो और वो फिर से संतरा छिलेंगे तो वहीं डालेंगे, और कुछ करेंगे वहीं डाल देंगे। आप गुस्सा भी करेंगे, बार बार गंदगी करते हो, लेकिन उनकी आदत होती है। लेकिन बाबा तो थकता नहीं, सफाई करता रहता है, बुद्धि की सफाई करता है और आत्माएं उसमें फिर से गंदगी भर लेती है। जिसको अपनी स्मृति को स्पष्ट करना है उसको अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना चाहिए, और ये समझ लेना चाहिए कि बुद्धि को स्वच्छ रखना हमारे अपने हाथ में है या किसी और के हाथ में। बोलो, अपने हाथ में है बुद्धि को स्वच्छ रखना या किसी और के हाथ में? हम चाहें तो व्यर्थ उसमें भरें, चाहें तो न भरें। ऐसे कोई हैं यहाँ जो नहीं चाहते? ऐसे कोई हैं जो चाहते हैं बुद्धि में व्यर्थ भरना? कोई भी नहीं चाहते, लेकिन भरते तो सभी हैं। क्यों है ना, ऐसी बात है, कोई नहीं चाहता और सभी भरते हैं, तो इसके बीच में क्या आ गया? हम नहीं चाहते, हम जाना नहीं चाहते और चले जाते हैं, ऐसा होता है? हम नहीं चाहते, मान लो हम ब्राह्मणों का नियम है, हमारे यहाँ तो नहीं पर बाहर जब आप दुनिया में हैं, आप नहीं चाहते पिक्चर में जाना और चले जाते हैं, होता है कभी ऐसा? ऐसा तो कभी नहीं होता। आप बाहर खाना नहीं चाहते और खा लेते हैं, ऐसा भी नहीं होता। भाई लोग स्मोकिंग नहीं करना चाहते और कर लेते हैं, होता है कभी? फिर हम नहीं चाहते कि अपनी बुद्धि में गंदगी भरें और भर लेते हैं, क्या गड़बड़ है बीच में? संस्कार तो स्मोकिंग के भी कई भाइयों में बड़े मजबूत थे, चेन स्मोकर थे, एक के बाद दूसरी सिगरेट पीते थे, अब नहीं पीते क्योंकि नहीं चाहते। अब नहीं चाहते तो वो काम नहीं करते जो पहले करते थे। अगर हम सचमुच नहीं चाहें तो हम नहीं करेंगे। चाहना में बहुत बड़ा बल है, इच्छा शक्ति, इंग्लिश में विल पावर, इच्छा शक्ति, जो हमारी सच्चे दिल की इच्छा है उसमें बहुत बड़ा बल है। अगर हम सचमुच नहीं चाहते तो हम नहीं भरते। हम में से अनेक पुरुषार्थी हैं, ऐसे हम जानते हैं, हमारे यहाँ भी हैं, जो नहीं भरते। अगर उनके पास कोई लेकर भी आए तो वो कहते हैं दूसरे कूड़ेदान बहुत है, उधर डालाओ, नहीं भरते। इच्छा हमारे अंदर अगर अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखने की है तो हम उसको स्वच्छ रख सकते हैं। और हमें याद रखना चाहिए बाबा का एक महावाक्य, बाबा ने कहा है मुरलियों में, सबने सुना होगा लेकिन एक ही बार कहा है इसलिए बहुतों को याद नहीं होगा, कि जैसे दुनिया में लोग रिद्धि सिद्धि के द्वारा अनेक चमत्कार दिखाते हैं, जादूगर जादूगिरी दिखाते हैं, होता कुछ नहीं, क्या होता है वो? हाथ की सफाई, बाबा ने कहा वो हाथ की सफाई होती है ना जादूगरों की। ऐसे ही हम सब भी अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी सिद्धि हमारी सिद्धियों की भेंट में कुछ भी नहीं है, हम सिद्धि दाता बन जाते हैं। भक्ति में जो लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं वो हमारी जड़ मूर्तियों से प्राप्त करते हैं, हमारी रचना है वो सिद्धि भी, हम न केवल सिद्धि स्वरूप लेकिन मास्टर सिद्धि दाता बन जाते हैं। तो इसका आधार है बुद्धि की सफाई, तो बुद्धि की सफाई के द्वारा चमत्कार होते हैं। चलो, बुद्धि को बिल्कुल स्वच्छ रखते हुए एकाग्र हम सभी के बीच में फिर से बाबा आ रहे हैं और फिर आएंगे। 6-7 मास के बाद बाबा से मिलन होगा या रोज? बोलो, जैसा मिलन अव्यक्त बाबा से होता है, जैसा अनुभव उनसे मिलकर होता है, ऐसा ही अनुभव रोज होता है, होता है। योग में अगर अच्छी स्थिरता हो जाए तो वैसा ही मिलन का अनुभव रोज होता है, किसी भी समय हो सकता है। अब जैसा कि हम सब बाबा की मुरलियों के आधार से समय की तीव्र गति को देख रहे हैं और जान रहे हैं, हमें अपनी एक शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा देना है। बाबा कहते रहते हैं बाबा की बातों को कैच करने की शक्ति। आज बाबा ने कहा साधनों के और किसी सहारे के आधार पर नहीं चलना है, लेकिन हम बाबा से बात करें और बाबा हमें क्या कहना चाहता है उसको ग्रहण कर लें, ऐसी अपनी आंतरिक शक्तियों को हमें बढ़ाना है, अपने योग को भी इस तरह कर देना है कि हम बाबा से बहुत अच्छी बात कर सकें, स्पष्ट बात कर सकें। ऐसा ना हो जैसा रू रिहान में बहुत कहते हैं कि हम बाबा से बात करते हैं और बाबा का उत्तर हमें नहीं मिलता है, हम कभी भी बाबा का उत्तर ग्रहण कर पाएं। तो इसके लिए अपनी बुद्धि को अच्छा स्वच्छ रखना है। जीवन की सफलता के लिए और क्या होना चाहिए? बस एक बात और करके इस क्वेश्चन को समाप्त। ऐसे तो बहुत बड़ा ये टॉपिक है और आप सब व्यक्तिगत रूप से इस पर विचार करें। व्यक्तिगत रूप से मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ बातें होती हैं जनरल जो सबके लिए लाभकारी हैं, और कुछ बातें होती हैं हमारी बिल्कुल व्यक्तिगत जिसे केवल हम जानते हैं, जो हमारे लिए बड़ी कल्याणकारी हैं। तो जीवन की सफलता का और आधार एक ही बात, दृढ़ता, संकल्पों में दृढ़ता। संकल्पों में हलचल नहीं, संकल्पों में विचलित होना नहीं, संकल्प ढीले ढाले नहीं। आज संकल्प किया कल उसको बदल दिया। जो महान आत्माएं हैं, जो आगे के नंबर की आत्माएं हैं, उनके आगे नंबर लेने का एक बहुत बड़ा आधार होता है कि वो संकल्प केवल एक बार करते हैं, केवल एक बार। फिर उस संकल्प के मार्ग में चाहे सारा संसार बाधा बन कर आ जाए, वो उससे विचलित नहीं होते। उदाहरण के लिए आप एक, मैं काल्पनिक बात का उदाहरण दे रहा हूं। एक बहन है कोई, उसने संकल्प कर लिया है बाबा की आज्ञाओं पर चलकर पूरा जीवन पावन रहना है। अब उसके घर से कोई उसको साथ नहीं देता, माँ बाप उसकी शादी के लिए तंग करते हैं सब। वो दृढ़ प्रतिज्ञ है कि मुझे बाबा की आज्ञाओं पर चलकर पावन बनना है। अब उसके मार्ग में बाधाएं आने लगती हैं। एक समय आ जाता है वो अकेली रह जाती है, उसके पास उसको खिलाने वाला कोई नहीं बचता, उसके जीवन का सहारा कोई नहीं बचता। अब उसकी परीक्षा है, वो क्या कर ले? वो अपना निर्णय बदल दे? जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पहले नंबर की आत्माएं, पहले नंबर की आत्माओं का अर्थ है विजयी रतन, 108 पहले, उनकी ये अपनी दृढ़ता है, एक बार संकल्प कर लिया अब चाहे भूखे रहें, भूखे तो रहेंगे नहीं बाबा के बच्चे, क्यों नहीं रहेंगे। हाँ, उसने गारंटी भी ली है, उसकी जिम्मेदारी है। और जो सबको खिलाने वाला वाला, उसके बच्चे भूखे रहेंगे? पर अगर मान लो वो रख भी दे थोड़ी देर कि देखूं ये कितने हिलते हैं, तो वो आत्मा हिलेगी नहीं, वो मरना चाहेगी, वो प्राण छोड़ देगी, वो संसार की हर कठिनाई को झेलने के लिए तैयार हो जाएगी, वो इस सारे संसार में अकेला रहना पसंद करेगी, लेकिन अपने संकल्प से विचलित नहीं होगी, संकल्प की दृढ़ता। इसलिए जो महान आत्माएं हैं उनके लिए ये कहा जाएगा कि वो संकल्प केवल एक बार ही करती हैं। संकल्प का प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प, महान संकल्प, वो उसे किसी भी कीमत पर बदलती नहीं। जो बदल दें वो महान नहीं, जो बदल दें वो शक्तिशाली आत्माएं नहीं। जो अपने संकल्पों को छोटी-छोटी परिस्थितियों में विचलित कर दें, वो संसार में हीरो एक्ट नहीं कर सकेंगे, वो हीरो एक्टर नहीं कहलाएंगे। जो अपने संकल्पों पे दृढ़ नहीं, संसार उनसे कुछ विशेष कामना नहीं कर सकेगा, वो संसार को कुछ दे नहीं पाएंगे। जो दृढ़ हैं, जो अपने संकल्पों के कारण, उन प्रतिज्ञाओं के कारण मर मिटने तक को तैयार हैं, सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं, चाहे उन्हें संपूर्ण संन्यास भरा जीवन जीना पड़े, उनकी सुख सुविधाएं सारी समाप्त हो जाएं, चाहे वो अकेले रह जाएं, लेकिन वो अपने संकल्पों पर दृढ़ हैं, ये है हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी सफलता का आधार। अब कर्मों की सफलता। पहला उत्तर दिया था सभी ने, बाबा करता है, हम नहीं। और आगे चलें, आज हमें ये संकल्प आया, हम नीचे गए और काम तो वहां चल ही रहा है बहुत ज्यादा, लोगों को लगता है जो भी देखते हैं बहुत बड़ा काम चल रहा है, लेकिन मुझे विचार चलने लगा कि इन कार्यों की सफलता के कुछ आधार हैं। बाबा तो है ही, बाबा का कार्य है, लेकिन हम दूसरी ओर ये भी देखते हैं कि बाबा के कार्य ही कहीं कहीं विघ्न विघ्नों से गुजरते हैं, बाबा के कार्य कहीं कहीं भारी होते दिखाई देते हैं, असफल होते दिखाई देते हैं। तो बाबा तो कर रहा है, लेकिन करने वालों का भी बहुत बड़ा रोल है। दोनों मिलकर कर रहे हैं, अकेले नहीं कर रहे, न हम अकेले कर रहे न वो अकेला कर रहा, इसलिए दोनों की हर चीज कार्यों को सफल कर रही है। अगर वो अकेला करता तो उसका कोई भी कार्य न असफल होता न विघ्नों से भरा होता। लेकिन हम भी कर रहे हैं तो किसके कार्य सफल, बोलो बोलो। एक भाई आए आज बॉम्बे के, मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताऊं, हमारे बहुत पुराने फ्रेंड बहुत दिन के बाद मिले, कुमार अब बूढ़े हो गए हैं। मैंने उन्हें बुलाया, वो सड़क से जा रहे थे किचन में, उन्हें कहा कि आप यहाँ हो, मैंने कहा आओ किचन तो देखो जरा। तो उसको तीन चार किचन है दिखाया तो वो कहने लगा कि इतना बड़ा काम चल रहा है, पता ही नहीं चलता बाहर। तो मैं उसको कहा कि भाई आप जैसे कुमार जो कुमार से बूढ़े हो गए, 40 साल हो गए उनको ज्ञान में, ऐसे कुमार तो गिनती के बचे हैं, 100 बचे होंगे मुश्किल से, बाकी सभी मार्ग बदल गए हैं। और कन्याएं भी ऐसी बहुत कम बची हैं, वो थोड़ी ज्यादा होंगी, पंजाब में ज्यादा हैं बहने, यूपी आदि में, जो बहुत समय से ज्ञान में हैं, ममा के समय से। तो हमारी चर्चा होने लगी कि ऐसा कुमार जीवन कितनी बड़ी तपस्या है। हालांकि वो तो बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसके पास पैसे कम ही नहीं, परिवार भी उसके संपन्न है, लेकिन कितनी बड़ी तपस्या है कि एक व्यक्ति अपना लंबा जीवन न केवल पवित्रता में लेकिन अनेक तरह की साधनाओं में और त्याग में और तपस्याओं में गुजारता चले, निर्विघ्न होकर निकल जाए जबकि संसार दिनों दिन दूषित होता है, इसमें बाधाएं और विघ्न बढ़ती हैं, लेकिन कोई आत्मा इसको सहज रूप से पार करती जा रही हो तो वो बहुत महिमा करे कि कितना बड़ा काम चल रहा है। तो मैं प्रैक्टिकल बात बताऊं, मैं सोच रहा था बैठ के वहां कि मैं यहाँ आया हूँ आज नीचे, और मैं जब से आया हूँ मैंने कुछ नहीं किया है, प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं किया। मुझे वो बुलाते तुम आओ जल्दी, और मैं गया तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वहां भी हमारे एक दो भाई हो रहे हैं तो वो भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, और कार्य तो बड़ा सुंदर चल रहा है, बिल्कुल सुंदर, फर्स्ट क्लास, कोई विघ्न नहीं उसमें, सब ठीक ठाक, कोई थका हुआ नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि बाबा का तो काम है, लेकिन कार्यों की सफलता के पीछे रहस्य क्या है। कार्य तो इससे बड़ा होगा अगले साल, और उससे अगले साल शायद लाखों ही आए एक एक बार, अभी जो संख्या हजारों में है वो एक दो जीरो और बढ़ जाएगी, उसके आगे वो लाखों तक पहुंच जाएगा एक दो साल में, तो बहुत लंबी बात नहीं। और कार्य इसी तरह सहज चलेगा। पहला ग्रुप आया था लेटी में, बड़ी भागदौड़, हम थक जाते थे, वहां मोटरसाइकिल रखते थे उस पर भी थक जाते थे नीचे। दूसरा चला, उसमें थोड़ा सा हल्का हुआ, और अब ये तीसरा नीचे, तो अब लगा कि हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ता, वहीं जाके बैठ जाते, कुछ भी नहीं करते। मैं सोच रहा था कि हमें तो बिना मतलब का नाम मिलता है, करते कुछ नहीं। सच्ची बात, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही कह रहे निरहंकारिता दिखाने के लिए आपको, पर ये सच्ची बात कि हम कुछ भी नहीं करते वहां, और नाम मिलता है और कार्य फर्स्ट क्लास हो रहा है। फाइनल में कहा जाएगा भाई किचन का काम बहुत अच्छा चला, और हमसे कोई पूछे तो हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो मैं सोच रहा था कि ये कार्यों की सफलता का आधार क्या है। थोड़े ही समय में जब हमारे पास लाख लोग आएंगे तब भी हमारा काम ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल सहज भाव से। एक समय था यज्ञ में जब हमारे पास 100-200 लोग आते थे, मैं सोचता था अगर 1000 आ जाएं तो क्या करेंगे हम, बड़ा मुश्किल होगा, सच सोचते थे। 72 से 73 में 1000 लोग हमारे पास आ जाएं, बड़ा मुश्किल होगा, कहां से बनाएंगे, कहां बैठाएंगे, कैसे खिलाएंगे उन्हें। जब 1000 आने लगे फिर सोचा 1000-1500 हुए, 3000 कहीं आ जाएं तो बहुत मुश्किल होगा। पहली बार 3000 आए बहुत थके हम सब, और फिर हर साल आने लगे कई कई बार तो वो भी नेचुरल सा होने लगा। फिर 5000 आए दो दो टर्न, फिर वो नेचुरल हुआ। पीछे 12-12 हजार आए नीचे तो वो भी नेचुरल हो गया। अब एक दो साल के इस बार शिवरात्रि की मुरली जिन्होंने सुनी है यहाँ, उनके मन में वो बात छप गई होगी, छप गई ना, कि प्यार का सागर किस तरह अपने परिवार के साथ बैठा था और कह रहा था कि तुम तो मुझे छोड़ के चले आए लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं करता, तुम्हारे साथ ही करता हूं। चाहे तो अकेला कर सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। मतलब चुटकी बजाए और संसार स्वर्ग बन जाए, लोप हो जाए कलयुग एक सेकंड में संकल्प करते ही। लेकिन उसका प्यार कि मैं अकेला नहीं करता, और फिर याद दिलाया कि तुम भी अकेले ना करो, ये भी तो याद दिलाया बाबा। प्यार करके फिर हमें कुछ सिखाता है कि मैं कुछ अकेला नहीं करता, शिव शक्तियों को साथ लेके करता है, तो तुम भी अकेले ना करो, साथ लेके करो। लेकिन हमारी चीजें भी तो प्रभाव डालती हैं काम पर, तो कैसे सफलता और कैसे विघ्न। हम सरल तो कार्य सरल और सफल, ये हमें अपने जीवन में याद रखना चाहिए, महामंत्र कहें इसे। हम अगर सरल चित्त हैं तो कार्य सरल और सफल। और हमें सरल चित्त क्या नहीं होने देता, कौन सी कमजोरी है जो हमें सरल नहीं रहने देती, बोलो। मैं जो कहूं वो होना ही चाहिए, दूसरे लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल न करें, मैं जो कहूं वही होना चाहिए, ये है कार्यों को भारी बनाने वाला मैं अहम। अगर मान लो कहीं ऐसा हो रहा है कि मैं कहूं और आप सब कर रहे हैं, आपको अपनी बुद्धि नहीं चलानी है, कोई कोई कह देते हैं अपनी बुद्धि नहीं चलाओ, श्रीमत पे चलो, जो मैं कहूं वो करो, सोचते हैं मैं जो कहता हूं वो श्रीमत है और तुम जो बुद्धि चलाते हो वो मनमत है। मान लो कहीं कोई ऐसा कह दे कि मैं जो कहूं तुम 100 लोग वही करना, तो बुद्धि कितनों की चली, एक की, और बाकी 100 की बुद्धि नहीं चली। और अगर सारे के सारे बुद्धि चला रहे किसी कार्यों को सफल करने के लिए, तो कार्य जल्दी सफल होगा। बुद्धि का अगर टकराव न हो, यह भी होगा, सारे बुद्धि चलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अगर बुद्धि अच्छी है और एक व्यक्ति बुद्धि चला रहा है और सारे ही अपनी बुद्धि को यूज करें अच्छे रूप से, तो कार्य सफल जल्दी होगा। इसलिए कार्यों की सफलता के लिए एक बहुत अच्छा सूत्र, मंत्र, फॉर्मूला कि हम हल्के हो जाएं, जिम्मेदारी दूसरों को देकर हम स्वयं को हल्का रखें और उन्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करने दें कार्यों को सफल करने में। अगर कहीं वो सफल नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी बुद्धि का उन्हें सहयोग दें। ये हम ना कहें कि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, इससे क्या नुकसान है कि दूसरे की बुद्धि पर एक प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, आत्मा की खुशी नष्ट हो जाती है और उसके अंदर जागृत होती है असहयोग की भावना। ये बहुत डीप साइकोलॉजी है, इसे समझ लेना चाहिए। हम किसी की बुद्धि को दबाएंगे, उसकी खुशी नष्ट होगी, उसकी बुद्धि का ह्रास होगा और उसके अंदर असहयोग करने की भावना जागृत होगी। वो हमें थैंक्स नहीं देगा जीवन भर, वो हमें दुआएं नहीं देगा, वो ये कहेगा जब भी कहने का मौका मिलेगा कि इन्होंने मेरा जीवन खराब कर दिया है। बाबा ने हम सबको ज्ञान देकर हमारी बुद्धि का दमन नहीं किया है, या किया है, हमारी बुद्धि को इतना विकसित कर दिया है कि हम उसको दिन रात थैंक्स देते हैं और सबसे पहले उसकी महिमा करते हैं कि बुद्धि दाता हो। प्रैक्टिकल में हम सबको बुद्धि दे दी है। हम अगर दूसरों को बुद्धि देना चाहते हैं तो दूसरों की बुद्धि का दमन करके बुद्धि नहीं दे सकते। हम स्वयं हल्के रहकर दूसरों को बुद्धि का दान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रयोग को करके, आपके साथ दो उनमें से एक भाई को बिल्कुल उसकी कम बुद्धि को और कम किया जा सकता, उस पे दबाव डाल दो, उसको दिन में 4 बार कहो तुम बुद्ध हो, समझोगे ही नहीं, सदा ऐसे ही रहोगे, भगवान ने भी तुम्हें बुद्धि दी पर तुम्हें बुद्धि मिली नहीं, ऐसे भाग्यहीन हो, तो क्या होगा, जितनी बुद्धि मिली हुई है उसको वो धीरे धीरे छीन होने लगेगी, हो जाएगी ना। ये प्रयोग नहीं करना है। बुद्धि बढ़ानी हो किसी की, किसी के पास कम बुद्धि है और उसकी बुद्धि को हमें विकसित करना है, तो बाबा ने क्या विधि अपनाई, हमारे पास बाबा के पास अर्जुन जैसे बाबा के लाल आए, जानते अर्जुन को मधुबन में, जिनके पास बुद्धि नहीं थी, भगवान ने उन्हें स्वीकार किया, बाप था बाप ने स्वीकार किया। वो ये भी कह सकता था कि तुम्हारे जैसों की मुझे जरूरत नहीं, जीवन भर मैं तुम्हें खिलाऊंगा यहां बैठा के, लेकिन उसने उसको स्वीकार किया और हमने देखा उसकी बुद्धि का विकास। हालांकि वो बुद्धिमान नहीं है आज, लेकिन उसके पास इतनी बुद्धि है कि वो सेवा कर सकता है। हमने कईयों को देखा, बहुत कम बुद्धि वाले आए और धीरे धीरे बुद्धि में रौनक आती गई। कैसे, बुद्धि का उनको दान दिया गया, दान को योगदान जैसा नहीं, हम उनको एनकरेज करें, उनको उत्साहित करें, हम उनको कुछ सिखाएं, उनको कुछ समझाएं, ये जानते हुए कि इनके पास कम बुद्धि है, हम गुस्सा ना करें कि 10 बार तो समझा लिया समझते ही नहीं, चिड़चिड़े ना हो जाएं। अगर वो 10 बार समझाने में समझ गया होता तो इतनी कम बुद्धि कैसे होती उसको, कम बुद्धि है इसलिए वो 10 बार में भी नहीं समझता। ये समझते हुए हम 11वीं बार फिर समझाएं, 12वीं बार भी समझाएं और समझाते ही रहें। संभव है ये कि हम समझाते रहें? संभव है, या हमारी सीमा है एक कि बहुत समझा लिया, अब तुम्हारे साथ दिमाग मारना, इसमें ही हमें अपना जीवन पूरा करना है क्या, हम ये कह देंगे, या हम समझाते ही रहेंगे जीवन भर? बोलो बोलो, बाबा ने क्या किया है? अगर वो हमें कह दे 2-4 साल समझा के कि मेरा दिमाग चाट लिया, कैसे तुम बच्चे हो नालायक, कह तो देता है नालायक हो, पर उसमें इतना प्यार भरा होता है कि सुनने वाले समझते हैं प्यार का सागर प्यार कर रहा है। जब बाबा नालायक कहते थे ना तो ऐसा लगता था कितना प्यार है बाबा का हमसे, कोई बुरा नहीं मानता था नहीं, सुनने में आते हुए भी लगता था कि भगवान ने हमको नालायक कहा, वाह हमारे भाग्य थे ना, नालायक तो थे ही। उस दृष्टि से जो वो हमें बनाना चाहता है और जो हम थे उस दृष्टि में, हमारे पास क्या बचा था। तो बाबा देखो कैसा सागर है अथाह, जिसकी सीमाएं नहीं है, समझाता ही आ रहा है, कभी गुस्सा नहीं करता। तो हम भी जब बाप समान बनते हैं तो हमें भी ऐसी धैर्यता अपने पास रखनी चाहिए। हाँ, धर्मराज भी बाबा ने आज क्या कहा, आज की मुरली में कर्मों की गुह्य गति का रहस्य था ना, ऑटोमेटिक लॉ है ड्रामा में, एक नियम है, एक का अनेक गुना कह दें 1000 पदम क्या, पुण्य का भी उतना ही श्रेष्ठ और पाप की भी सजाएं उतनी, ये ऑटोमेटिक है, इसमें बाबा को कोई कंप्यूटर रखने की हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक काम होता है। इसलिए धर्मराज की सजाएं भी स्वतः ही आत्माओं को मिलती जाती हैं, उनकी खुशी गुम होती जाती है, भिन्न भिन्न रूप से सजाएं अनुभव होती रही हैं, होती रहेंगी। तो हम भी दूसरों को बुद्धि का दान दें, ये कार्यों को सफल करने का बहुत अच्छा तरीका है। जिसके पास लक्ष्य हो जीवन में सीखने का और सिखाने का, सीखने की इच्छा निरंतर, जब तक जीवित रहेंगे सीखते ही रहेंगे, और दूसरों को सिखाकर समझाकर बड़ा करने की, सहयोगी बनाने की इच्छा, वो अपने कार्यों में सफल होते हैं। हल्का रहना है, सरल चित रहना, इसके लिए बहुत अच्छा विवेक और शक्तियों की जरूरत है। कौन सरल रह सकते हैं? चिंताएं हों, परिस्थितियां हों, काम भी भारी हो, फिर भी हम हल्के रह जाएं, बहुत बड़े विवेक की आवश्यकता है और शक्तियों की आवश्यकता है। तब आत्मा सहज भाव से कार्यों को सफल कर लेती है, तनाव मुक्त हो जाती है। बाबा इसमें कहते हैं कि बाबा बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं, साकार में कहा करते थे, बाबा बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं और जो बच्चे उस जिम्मेदारी को स्वीकार करके वो जिम्मेदारी फिर से बाबा को समर्पित करके कार्य करते हैं वो सहज ही जिम्मेदारियों को पूर्ण कर लेते हैं। और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनको जिम्मेदारी मिली और मिलते ही टेंशन शुरू, ऑफिशियल रूप शुरू, सरलता खत्म, अथॉरिटी उल्टी प्रारंभ। बहुतों को ये बात देखने में आती है। और बहुत आत्माएं जिम्मेदारी मिली जो महान आत्माएं हैं और वो सोचती हैं कि जिम्मेदारी बाबा ने दी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज बाबा ने कहा हम सब की है, हल्का रहने वाली एक बहुत बड़ी दवाई याद है, बताओ आज की मूल्य से किसने नोट की है, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बाबा जैसे जैसे आप चलाएंगे वैसे ही चलेंगे। और ये तो एक कॉमन सी बात है, जहां बैठाओगे जो कराओगे वो तो हम सोचते हैं हमें जिस सेंटर पे भेजेंगे चले जाएंगे, जो काम कराएंगे कर देंगे, झाड़ू लगाने को कहोगे लगा देंगे, लेकिन भगवान झाड़ू लगाने के लिए थोड़ा ही कहता है, जहां बैठाओगे आज बाबा ने कहा जिस स्थिति के सिंहासन पर आप बैठाओगे वहीं बैठेंगे, कहा ना है? जहां बैठाओगे, मूल वतन में बैठाओ या सूक्ष्म वतन में बैठाओ या इस देह में सिंहासन पर अकाल तख्त पर बैठाओ वहीं बैठेंगे, ये हैं उसके बहुत बड़े राज, जो आज की मूल्य में भी था, जिस स्थिति के आसन पर बैठाओगे उस पर ही बैठेंगे और जो कराओगे काम नहीं, जो विश्व कल्याण का कार्य सारे संसार की आत्माओं को दान महादान और वरदान देने का कार्य कराओगे वो हम करेंगे। तो इस तरह जिम्मेदारियों को निभाने वाले जो इस जिम्मेदारी को निभाते हैं वो अपनी सेवाओं की जिम्मेदारियों को सहज ही निभा लेते हैं, उनमें उनको कोई कष्ट नहीं होता। तो बाबा आ रहे हैं, हम हमेशा एक बात कहते हैं, ज्ञान सरोवर वाले तो जानते हैं कि बाबा जब भी आए हमें उसे एक अच्छी गिफ्ट देनी होती है। कौन सी गिफ्ट? स्वस्थिति की गिफ्ट। तो आज से ही, अभी 3 दिन हैं, तीनों दिन में कोई भी एक स्वमान का अभ्यास रोज, और हमने अपने प्रयोग में एक स्वमान दिया है सबसे बड़ा जो उसमें है वो तो जानते ही हैं, मैं बाप समान हूं, बहुत बड़ी चीज है ये, उसको एक्सप्लेन भी किया थोड़ा थोड़ा और सब उस पर चिंतन कर रहे हैं। इस नशे में आप रह के देखें मैं बाप समान हूं और मुझे क्या क्या करना है, जो करना है वो करेंगे। अब ऐसे ही एक स्वमान, मैं पूर्वज हूं, महान एकदम पूर्वज। ऐसे ही स्वमान, मैं विजयी आत्मा हूं। 3 दिन 3 ले लें आप और उनका अच्छा अभ्यास करें, और जितना हो सके बार बार जो बाबा अभ्यास कराते आ रहे हैं बहुत अच्छे अनुभव के लिए, यहाँ तो किसी को जो भी बहने आई हैं और कुछ और काम नहीं है, तो घंटे में एक बार देह से न्यारे होने का अनुभव, मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर राजा विराजमान हूँ, मैं आत्मा स्तन में अवतरित हुई हूँ, ऐसे संकल्पों से दिन में कई बार कम से कम 5 बार, और जो बहुत अच्छी तपस्या करना चाहते हैं घंटे में एक बार ऐसा दीदी होने का अभ्यास करेंगे साथ में योग, तो बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा। और बाबा के आने से पहले तक हम एक अच्छी गिफ्ट स्थिति की तैयार कर लेंगे और जिसके आधार से बाबा की शक्तियां और वाइब्रेशन हमें मिलेंगे। ओम शांति।